क्या कहते हैं कि ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान स्थिति भी कर्म फल का जो त्याग है, यानी निष्काम भाव से फल की इच्छा न करके कि जो कर्मों का करना है वो निष्काम भाव का दर्जा उसे उनका है, वो श्रेष्ठ है। क्यों? कि त्यागात त्याग से अनंत शांति मिलती है। तो यह जो ध्यान है वह तो निष्काम भाव नहीं है, और जो निष्काम भाव है वह ध्यान की प्रधानता नहीं। तो ध्यान रहित जो निष्काम भाव है वो भी एक प्रकार से ध्यान से श्रेष्ठ है, और ध्यान भी और निष्काम भाव भी तो और बात क्या है। मुकाबला दोनों का जो होता है तो देखो, तो ध्यान के मन तो निष्काम भाव नहीं, ध्यान तो अपने सैकाम ज्ञान है। जैसे मोदी महाराज ध्यान करते थे तो उनका वो सैकाम ज्ञान था, राज की प्राप्ति के लिए उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, उसे भी भगवान मिले, उसकी कामना की भी सिद्धि करी और उसका उद्धार भी कर। किंतु प्रहलाद जी का जो भाव है वो प्रहलाद जी की जो समृद्धि ध्यान है वो निष्काम भाव को लेकर के, तो उसका दर्जा ध्रुव की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। भगवान प्रहलाद पर खुश होकर के कहते हैं कि प्रहलाद तुम जो चाहो उसे प्रदान मांगो, कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और मैं के बदले में आप मुझको वरदान दें, वो क्या भक्ति है, वो तो व्यापार है। मैं बढ़िया नहीं हूं, मैं बणिक नहीं हूं। बढ़िया जो है वो सौदा देता है और रुपया लेता है, तो वो तो व्यापार है कि मैं आपकी भक्ति करूं आप मुझको उसके बदले में वरदान दें। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, तुम्हारे कोई बात की कामना नहीं है, किंतु मेरे संतोष के वास्ते तुम कछु मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपके तो संतोष ही सदा ही संतोष, किंतु आप बार बार मुझको कहते हो कि मांगो मांगो, इसे तो ये अनुमान करूंगा अस्त यह बात सिद्ध हो है कि मेरे भीतर के वहां कोई छिपी हुई कामना है जो मेरी निर्वाणी है। मैं अपने मन में समझता हूं कि मेरे कोई कामना नहीं, किंतु ये मेरी समझ ऐसे गलत है, आपकी समझ ही ठीक है, नहीं तो आप बार बार क्यों कहते कि प्रहलाद पूछू मांगो। आप बार बार कहते हैं तो अच्छा मैं मांगता हूं, मेरे हृदय में कहीं छिपी हुई कामना हो तो आप मेरी कामना को विनाश कर दो, आप उसको निष्कामी बनाते। मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारा तो कोई काम नहीं, मैं तुम्हारे क्या निष्कामी बना दू। ध्रुव जी जो है सो अर्थार्थी भक्त थे भगवान के, अब प्रहलाद जी जो है ये निष्कामी ज्ञानी भक्त थे। ज्ञानी भक्त की सबसे बड़ी प्रशंसा की है, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त हो एक भक्तिर विशिष्टते प्रिय ज्ञानी नोत्तरता हम सत मम प्रिय। उन चार प्रकार के भक्तों में नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है, एक भक्ति वाला नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है। चार भक्त कौन? चार तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चार भक्त है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार। अर्थ के लिए भगवान को भगव रूपियों के लिए कोई पदार्थ के लिए तो वो अर्थार्थ, संकट निवारण के लिए भगवान को भजे वो अर्थ, और मुक्ति के लिए भगवान को भजे वो जिज्ञासु, और एकदम निष्काम भाव से समझो कि भजे वो ज्ञानी। तो उन चार प्रकार के भक्तों के बीच में सबसे बढ़कर ज्ञानी भक्त, क्योंकि ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूं, इसलिए ज्ञानी मुझको अति से प्यारा है। प्रिय ज्ञानी नोत्तरता हम सच मम प्रिय, उदारा सर्वे ज्ञानी त्वादुणे मतम, एते सर्व उदारा, ये सभी उदार है, सभी श्रेष्ठ है, और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मेरे स्वरूप ही है। तो गुरु जी ने सैकाम भाव से ध्यान किया राज की प्राप्ति के लिए, इसलिए भगवान के भक्त थे किंतु अर्थार्थी थे। द्रौपदी ने एक चित्त होकर के भगवान को पुकार लगाई, जिस समय में उसका चीर उतारा जा रहा है, जो हम उसके सिंह को खींच रहे हैं, उस समय में हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे द्वारकापति पुकारे, और भगवान उसकी रक्षा करते। रानी की दुर्वासा के सुबह में पुकार लगाई तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं। एक समय में दुर्वासा ऋषि दुर्योधन का भेजा हुआ दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास में आई और आके कहा कि मेरे साथ में 10,000 शिष्य है, उनके लिए भोजन तैयार करो। और मैं मध्यान्ह का संध्या करके समान संध्या करके आता हूं। बहुत अच्छी बात। द्रौपदी से पूछा गया 10,000 शिष्यों के सही थे, दुर्वासा को निमंत्रण दिया गया, अभी तक तुमने भोजन तो नहीं किया ना? बोले महाराज मैं तो भोजन करते थी। तो भोजन कर चुकी। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि दुर्वासा ऋषि अपने घर के ऊपर आवेंगे और खाने को उसको मिलेगा नहीं, कहां से मिलेगा? जब तक ध्रुव जी भोजन नहीं करती कर रही है, उसके पहले तो लाख आदमी आ जाओ कोई परवाह नहीं, और ध्रुव जी जो भोजन कर लेने के बाद में वो सूर्य की जो टोकरी है उसमें भोजन समाप्त हो जाता। अब वो भगवान से पुकार लगाने लगी कि हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, उस समय में आपने मेरी रक्षा की, मेरी लज्जा की रक्षा की। उस समय में तो सुनो कि मेरी लाज ही जाती थी, किंतु आज तो हमारे कुटुंब के लाश का प्रकरण है। यदि एक प्रकार से थी दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और उसको खाने को नहीं मिला, तो आपने देश से हमारे कुटुंब को भस्म कर दिया। तो हे नाथ, हमारे कुटुंब की रक्षा के वास्ते आप शीघ्र पधारे। उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी महाराज आप आ गए। हाँ आ तो गया, किंतु मैं भूखा हूं, मुझको खाने के वास्ते कुछ नहीं। बोले महाराज खाने का तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम हमारे से विनोद करती हो? बोले नहीं महाराज, विनोद क्या करूं, कुछ भी नहीं है घर के वहां खाने के। वो बटलोई, हाँ बटलोई तो है महाराज, पर मैं भोजन कर चुकी, और भोजन करने के बाद बटलोई को मांझ कर और धो करके रखती, बोले जैसे वैसे का। अच्छा महाराज, बटलोई लाकर हाजिर कर दी। उस बटलोई के गलबे में, जैसे मनुष्य का गला होता है ऐसे उस बटलोई का जो गलवा है उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था, उसको लेकर के भगवान ने अपने भोग लगाया और कहा कि विश्वदेव त्रिपद हो, आप तो विश्वदेव है, आपके त्रिपद में सारी संसार त्रिपद होगी। स्वजीव कुमार कहे, तुम जाओ। 10,000 शिष्यों के श्री जो दुर्वासा समान सुंदर के लिए तालाब पर गए हैं उनको बुला लाओ, तो भोजन क्या है? बड़े उत्साह के साथ में सहजे उसने कहा, सहजे समझता है भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं तो हमको क्या चिंता है, हम तो आपके हुक्म से लाते हैं। वहां गई, वहां ये दशा हुई, स्नान करके संध्या करते थे, ओम रितम से सप्तम इस मंत्र का जप करते थे, अगम जप का, उसमें नासिका लगाई जाती है जल के, या नासिका के जल लगाकर जल दिया जाता है, जल में स्नान कर लेते हैं, झुककर कर लेते हैं, नासिका झुककर लगा देते हैं। तो एक प्रकार से थी सबको डकार आने लगी और सबका पेट गले तक भर गया। ध्रुवापने अपने शिष्यों से पूछा, क्यों रे तुम्हारी क्या दशा? बोले महाराज जो दशा आपकी हुई हमारी, गया तक एक पेट भर गया है, झुकना चाहो तो झुक नहीं सकते। दुर्वासा ने कहा कि देखो मेरी बात को सुनो, ये राजा युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के भक्तों से मैं डरता हूं। एक बार मेरी तलब फजीती हो चुकी है अम्बरीश के यहां, और यहां भी एक प्रकार से हम लोगों की फजीती न हो जाए, इसलिए सब यहां से ही भाग चलो। तो 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा वहां से भाग, उसके बाद वहां सहदेव पहुंचे, घाटियों से पूछा यहां दुर्वासा ऋषि आए थे? हाँ बोले आए थे 10,000 शिष्यों के सहित, उन्होंने स्नान किया मिला की किंतु वे तो अमुक दिशा की तरफ चले गए। ठीक है, सहदेव वापिस आकर के भगवान से कहा महाराज मैं वहां गया था, वहां गए थे किंतु वो तो समान संध्या करके चल दिए, उनका पता नहीं कहां गए और कब आएंगे। बोले कोई चिंता नहीं, जब हमें सब निश्चिंत है कि भगवान बैठे हैं तो दुर्वासा कभी हो। तो यह द्रौपदी की जो भक्ति है, द्रौपदी जैसे आर्थ भक्ति थी संकट निवारण के वास्ते भेजा कर, उसके लिए भी भगवान आते थे, किंतु ऊंचा दर्जा प्रहलाद का ही है, प्रहलाद के समान नहीं। राजा युधिष्ठिर जिज्ञासु भक्त थे, मुक्ति के लिए भगवान को भजा करते थे, आत्मा कल्याण के लिए, वो भी बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, किंतु प्रहलाद के जैसा दर्जा युधिष्ठिर का भी नहीं। तो निष्काम जो भाव है उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, भगवान के ध्यान से भी बढ़कर के निष्काम भाव है। अब निष्काम भाव जो है भगवान का ध्यान जो है तो डबल बात, फिर तो कहना ही क्या है, सोनो सुगंधी सोनो। जैसे कहो कि ठीक है उस वक्त में तो भगवान मौजूद थे, भगवान का अवतार था, एक प्रकार से भगवान का ध्यान करना, भगवान से मिलना, भगवान को बुलाना, ये सब बात हो सकती थी। और अब भगवान कहां? बोले ये तो आपकी समझ की गलती है, भगवान तो सदा सर्वदा सर्वदा सदा ही मौजूद रहते हैं। भगवान में सदा विश्वास है, उसके लिए भगवान अभी यहां है, सब जगह में कोई भी जगह से नहीं गया भगवान में। और जिनके श्रद्धा विश्वास नहीं है उसके लिए उस वक्त भी भगवान दूरी से निकट होते हैं, भी दूरी से जहां प्रेम है वहां दूर में रहते हुए निकट ही है, और जहां प्रेम नहीं है वहां निकट में रहते हुए दूरी। सब में भगवान विराजमान है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसमें भगवान न हो, और कोई भी ऐसा जड़ पदार्थ नहीं है कि जिसमें भगवान न हो। प्रहलाद का निश्चय देखो, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को खंभ के बांध कर करके और तलवार से उसका मस्तक काटना चाहते हैं और कहते हैं बतला तेरा सो भगवान कहाँ है, अब तेरे भगवान को बोल तेरी रक्षा कर। प्रहलाद बेफिक्र हंसता है, पिताजी भगवान तो सब जगह है, इस तलवार में भी भगवान है, इस खम में भी भगवान है, आप में भी है, मेरे में भी है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां भगवान न हो। आप कहते हो कि भगवान कहाँ है, किस खम में भगवान है, इसको खम का तुझको बांध करके मैं तुझको मारता हूं, अब तेरे भगवान को तेरे को दोनों को मैं काट डालूंगा, इस तुलवार से खम्भ को भी काट डालूंगा तेरे को भी काट डालूंगा, देख रहा तेरे भगवान। इस प्रकार से थी कोप करके उसका पिता जो है जो तलवार उठा करके चलाने की तैयारी करी, उसी भग जैसे खंभा में भारी भयंकर शब्द है और एकदम खंभा से फाड़ गया। सारे ब्रह्मांड के बीच में भूचाल होने लगा, तो उसमें दस्त भगवान निकले, उस जीवन किसी को गोद में लेकर के उसको अपने नखों में से चीर डाले। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं हो। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम से क्या कहा था देखो, भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि मेरे रहने के वास्ते स्थान बताओ कि मैं कहां ठहरूं, कहां निवास करूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप ऐसा बताएं कि आपका निवास कहां है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहां आप नहीं हो, तो मैं आपको कहां बताऊं, कहीं आपका अभाव तो बताऊं, आप तो सब दिखा। फिर भी आप कहते हो बतलाने के लिए, तो मैं आपको बतलाता हूं। जिसकी जीवा हंसने की माफ हो गई, हंसने मोती चुभती है, इसी प्रकार से आपके नाम का रटन करती है, आपके नाम मोती को चुभती है, आपके नाव का जप करती है, उसके लिए आप बात करो। और जिसके क्रम आपकी कथा को सुनकर के कभी बढ़ते नहीं, जैसे नदियां समुद्र में गिरती है रात दिन, तुम तो समुद्र कभी नदियों से भरता नहीं, इस बाबत जिसके क्रम जो है समुद्र के समान है, और आपकी कथा सुनकर के जिसके क्रम कभी बढ़ते नहीं, कथा है नदियां है कथा रूपी नदियां, उसके कानों प्रति वाला तभी कान नहीं भरते, वो कभी अघाता नहीं है, ऐसे पुरुष के हृदय में आप जाकर बात करो। तो ख्याल करना चाहिए, ये उपाय बदला है, इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान का नाम हर वक्त जपना चाहिए, भगवान के गुण प्रभाव तत्व रस की बातें सुननी चाहिए, भगवान के नाम रूप लीला धाम और महिमा की बातें कानों से सुनते रहना चाहिए, ये उपाय बतला। और भगवान का निवास स्थान बतला सारा संसार जड़ चेतन स्थावर जंगम सब में भगवान प्यार, इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा, सबसे प्रेम करना भगवान से प्रेम करना, किसी से एक से जो सकना भगवान से जो सकना है, किसी से डर करना भगवान से डर करना है, इस बात को ख्याल कर करके हम लोगों को उचित है हम सब के साथ में प्रेम बढ़ाएं, परस्पर में प्रेम बढ़ाएं, ऐश आराम स्वाद सुखी और स्वार्थ और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इन सबको धूल के समान समझ करके ठुकरा दे, ये हमारे प्रेम में कलम है, ईश्वर की भक्ति में ये धाबा है। फिर आप देखो कि भगवान की मिलने में कितना समय लगे। वो भी आदमी की जो चेष्टा होती है सारी रुपयों के लिए होती है, उसकी सारी चेष्टा रुपयों के लिए होती है, इसी प्रकार जिसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है, भगवान के अर्थ होती है, इतने मात्र से भगवान मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मदद से मध्य कर्माणी कुरम सिद्धि मुआफ्रसि वो अर्थ कर्म करता हुआ पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने गीता की 12 जाके 9 के श्लोक में कहा। तो जैसे एक अति से लोभी आदमी अपनी चेष्टा धन के लिए करता है, रुपयों के वास्ते करता है, इसी प्रकार से हम लोगों को अपनी सारी चेष्टा भगवान के लिए करनी चाहिए। कोई भी आदमी अपनी क्रिया से नाराज है तो समझे भगवान नाराज हो, उसको यही राज्य कर लेना चाहिए, तो वो मामला यही खत्म हो जाता है। एक आदमी के साथ में जब मामला रहता है तो उसको सुलटाने के लिए फिर हमारा जन्म होता है। किसी के साथ में हम एक प्रकार से द्वेष या भय रखें या ईर्ष्या करें तो भगवान के साथ में करना है। इस मन को मन में समझ कर करके और हरेक प्रकार से सबको खुश रखना, अपनी सारी क्रिया सब की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। सबकी प्रसन्नता वही भगवान की प्रसन्नता है। ये सब साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान तो प्रत्यक्ष है। भगवान तो कहते हैं कि मैं सब में व्यापक हूं, सब मेरी आत्मा है। बहुमान जन्मना नहीं थी ज्ञानवान मान प्रबुद्ध थे वासुदेव सर्वे थी स्वहात्मा सुदुर्लभ है। भगवान गीता की साथ में जाके 19 के श्लोक में कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में 84 लाख योनियां उसके अंत में ये मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, यही अंत का जन्म है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान मान मुझको भजता है, मुझमें प्रेम करता है। किस प्रकार से भजे कि वासुदेव सर्वेति, सब साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। इस प्रकार से भजने वाला जो है ज्ञानी महात्मा जो है महात्मा अतिशय उच्चकोटि का महात्मा, जरूर महात्मा ने सुदुर्ल भगवान खुद कहते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। शांति शांति शांति।